حضرت اطہر علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن منصوب ہے وقت کے امام کے نام سے, اپنے امام کے حضور ادا احترام کے لیے, ان کے ساتھ اظہار وفا کے لیے, تجدید بیعت کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل
محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
اذن محترم محفل عید مباحلہ کے حوالے سے اور چند دن پہلے دائرے کے عید غدیر کے ایام تھے, اور جب بھی عید کا ایسا کوئی موقع آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک پرانی رسم, پرانا طریقہ کار آ جاتا ہے. جب بھی عید آیا کرتی تھی ہم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے, سلام وغیرہ ذرا جوش و جذبے سے کرتے تھے. تو جب ہم لوگ ذرا جوش و جذبے سے سلام کرتے تھے تو بزرگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آئے. تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی عیدی کچھ نہ کچھ ملنی چاہیے, عید کر لینا ہے. تو اب جب عمر اتنی ہو گئی ہے تو میرے دل میں وہ خواہش ابھی بھی باقی ہے. میں سوچتا ہوں اب کس کے پاس جاؤں عیدی لینے کے لیے. جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو میں اپنے امام سے کہتا ہوں کہ مولا اب تو آپ ہی کے ماننے والے ہیں, کس کے پاس جائیں عیدی لینے کے, آپ ہی کے پاس آئیں. الحمدللہ رب العالمین, آپ میں سے کچھ لوگ ان کی نسل سے ہیں, ان کے خاندان سے ہیں, اور سب کے سب ان کے عقیدت مند ہیں. عید کا موقع ہے, ابتدا ہی سے ان کے حضور پہنچتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے جد ہم جد کی عید ہے, ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں عیدی میں کیا ملنا چاہیے. ان سے طلب کرتے ہیں کہ مولا ایک عیدی ہمیں بھی نصیب فرمائے. اپنے امام کے حضور عیدی کا مطالبہ, درخواست, تقاضا پیش کرنے کے لیے اور ایک اچھی سی عیدی حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل
محمد.
یہ ان کے خاندان کی بزرگواری ہے کہ ان کے سامنے جا کر کچھ مانگنے کا بھی دل نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے نادان کچھ مانگیں گے تو چھوٹی چیز مانگ کر آ جائیں گے, اور اگر ان پر چھوڑ دیں کہ مولا آپ جو بہتر سمجھیں وہ ہمیں نصیب فرمائیں تو ہمیشہ اچھی چیز ملے گی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مولا سے کہتا ہوں مولا عیدی آپ کی چاہیے, عیدی میں جو چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے. فیضان محترم, بڑا اچھا موقع ہے اور اپنی عیدی کا مطالبہ اور درخواست تقاضا بھی ان کے سامنے رکھ دیا ہے. اب کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو عیدی میں ہمیں دیں تو عیدی میں کیا دیں. بس یہیں سے اپنی بات بھی شروع کر لیں گے. درود بھیجے گا محمد. محترم, حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم بہت کم وقت کے لیے آتے ہیں, جیسے آج یہاں پر چند منٹس بہت اگر ہوا تو شاید 70-80 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, تو بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع کے اوپر جو سب سے اہم بات کہنی ہے وہ کیا ہے. کیونکہ انسان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہوتا ہے. 30-31 سال ہو گئے ہمیں بھی طالب علم ہوئے ہوئے, تو انسان کو بعض اوقات اس بات کے انتخاب میں بڑی مشکل آ رہی ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ جو 50-60 منٹ ہم نے بولنا ہے, مثال کے طور پر اس میں سے بھی چند منٹ گزر چکے ہوتے ہیں, तो अब इसमें क्या कहा जाए? तो बालोकात हम ये सोचने लगते हैं कि जो अहम तरीन बातें हैं उनमें से चंद चीजें निकाल कर यहाँ पर बयान कर दी जाए। बालोकात बेरब भी हो जाती है, वो राबता जो अगर कहीं बाजाबता कोई जगह हो जहाँ आपने चार पाँच दिन बोलना हो तो वहाँ पर आप हर बात से पहले उसका एक मुकदमा तैयार करते हैं ताकि उस बात तक पहुँचें। तो ये जो चंद मिनट की गुफ्तगु होती है इसमें बाज़ात वो मुकदमा तैयार नहीं हो पाते और उसके बगैर ही कुछ बातें कहनी पड़ जाती हैं तो बेज़ाहिर बाज़ात बेरब्त लगने लगती हैं। लेकिन हमें बात के बेरब्त कहलाए जाने का ख़तरा लेना पड़ जाता है, इसके मुकाबले में ये बात ही ना करें तो हम ये बेरब्त होने का ख़तरा तो ले लेते हैं लेकिन बात कर देते हैं। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद। ईद मुबाहला से मैं आगाज करूंगा और मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ, आप में से कुछ हजरात ने हमें पहले भी सुना होगा और अक्सर ने जाहिर है कि नहीं सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होता उनके लिए मैं जहाँ कहीं भी पहली दफ़ा पहुँचता हूँ चंद पॉइंट्स अर्ज करता हूँ, वो मेरा तकिया कलाम समझ लीजिए। जहाँ कहीं भी पहली दफ़ा हाजिर होने का मौका मिलता है तो वो चंद पॉइंट्स मैं ज़रूर अर्ज कर देता हूँ। वक्त कम है तो मैं बहुत तेज़ी से अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हयात हैं और मैं मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों के सामने इस एतराफ़ में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपनी वालदा की गोद में जब से था तब से इमाम हुसैन की मजालिस में शिरकत कर रहा था, ये उनका एहसान है हम लोगों को। सात सात मजलिसों में जाती थी, आठ आठ मजलिसों में जाती थी रोज़ाना। हम लोग बचपने में जब छोटे थे तो उनके साथ जाते थे और मुझे याद है कि एक घर से दूसरे घर मेरी वालदा मरसीद पढ़ती थी और मातम भी करवाती थी तो हम बहुत ज़्यादा जाया करते थे। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो हम मर्दाना मजलिसों में अलहदा से, उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग जो हैं वो अलहदे से जाया करें, तो फिर साथ साथ आठ आठ में तो नहीं जाते थे, एक दो में जाते थे। और उसके बाद जब घर आते थे तो वो पूछती थी, खुद भी मजलिसों में जाती थी, फिर वापस आती थी तो पूछा करती थी कि भाई मजलिस में क्या हुआ। ज़ाहिर है कि वो ज़रा जानना चाहती थी कि ऐसा सुनी कि बच्चे गए थे तो वहाँ कुछ और खेल कूद के वापस ना आ गए हों, तो हमें सुनना पड़ता था कि भाई ये मौलाना जो कुछ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये वालदा बाद में पूछेंगी भाई उन्होंने क्या कहा। तो बालोका तो पूछा करती थी कि भाई लोगों का रिएक्शन कैसा था, तो हमने बताते थे कि भाई लोगों ने बड़ी तारीफें की हैं, लोगों ने नारे लगाए, तो तफसीलात काफ़ी पूछती थी। उसके बाद कभी कभी वो पूछती थी कि अच्छा जो मौलाना साहब ने बताया था उसमें से कुछ बताओ। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब दुश्वारी आती थी कि जब वहां बैठे होते थे तो लगता था कि समझ में आ रहा है और जब वो पूछती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था कि उस वक्त क्या समझ में आ रहा था। और कभी वो पूछती थी भाई एक घंटा उन्होंने तकरीर की तुम्हें क्या समझ में आया बताओ, तो पांच मिनट भी नहीं लगते थे, मामला खत्म हो जाता, वाकई समझ में नहीं आता था कि भाई वो एक घंटा कहाँ गया। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया और उसके बाद जब मैंने खुद तालिब-ए-इल्मी में कदम रखा तो मैंने इस बात के ऊपर और ज़्यादा गौर किया और जब खुद पढ़ने का इरादा किया तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर किया कि ये जो एक घंटा होता है ये जाता कहाँ है और इसमें जो बातें की जाती हैं वो बातें हम लोगों की ज़िंदगी पर असर क्या डाल रही हैं। अब इस बात को मैं और मुख्तसर करने की खातिर एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हमारा ताल्लुक़ कराची से है, कराची तो वैसे बहुत सारे मामलों में बदनाम है लेकिन इसमें कुछ खुशनामियाँ भी हैं। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ तकरीबन 25 अहले बैत के चाहने वाले जुमा मुनाकिद करवाते हैं एक शहर के अंदर, 25 से ज़्यादा जुमे मुनाकिद होते हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने एक दफ़ा एक दोस्त के साथ जो MBA किए हुए थे उनके साथ बैठकर इस बात का हिसाब करना चाहा कि इस शहर में एक साल में कितनी मजलिसें होती हैं, तो हमारा बहुत कम पर रहते हुए तखमीना ये था कि 3 से 4 लाख के दरमियान कहीं होती हैं, 3 से 4 लाख मजलिसें इस शहर में हो रही है। हमने ये सोचा कि भाई अगर हर मजलिस में सिर्फ 25 आदमी लगा ले, सिर्फ अब कराची में नस्तर पाक जैसे में दसियों हजार का मजमा होता है, अगर सिर्फ 25 आदमी लगा ले और हर मजलिस में 50 मिनट लगा ले तो ये कई मिलियन घंटे तबलीग बनती है, कई मिलियन घंटे तबलीग। उस कई मिलियन घंटे तबलीग के बाद अगर मैं लोगों से ये पूछूं कि हमारे अखलाक बेहतर हो रहे हैं कौम के या बुरे हो रहे हैं, तो मुझे परेशानी ये शुरू हुई कि भाई ये जो कई घंटे तबलीग हो रही है उसके बाद भी लोगों के अखलाकियात में बेहतरी क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जो मैं अब आपके सामने सवाल रख रहा हूँ ये 20 से ज्यादा मुल्कों में शायद कर चुका हूँ, और वो ये कि आपके ख्याल में आखिरी 30-35 साल में लोगों के अखलाकियात में बेहतरी आई है या मुश्किल बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर खानदानों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं, सूरत हाल कैसी है, बच्चों की तरबियत के मामले में हमारी कामयाबी बढ़ रही है या खुदा न करे नऊज़ु बिल्लाह ताला कुछ और बढ़ रहा है। तो ये मुझे और आपको फौरन सोचना पड़ता है और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अब कुछ राज होंगे यकीन है जिसको यहाँ पे आज कहने की जरूरत नहीं है, और मैं इस मामले में बदनाम हूँ कि ईद का महफिल मुकासदा भी पढ़ता हूँ तो उसको मसाइब पर तब्दील कर देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस तफसील में ना जाऊँ कि भाई क्या मसाइल हैं। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि हम लोग जो बोलने वाले लोग हैं बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिसके नतीजे में लोगों के अंदर मुस्बत तब्दीली नहीं आ पा रही। सिर्फ एक पॉइंट आपकी खिदमत में तेज़ी से अर्ज करूँगा, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मजलिस में पढ़ रहे हैं या जो खिताबात हो रहे हैं उनके अंदर कुछ ऐसे लोगों को हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ना यहां बैठे हैं ना सुनने को तैयार हैं, और जो लोग यहां बैठे हैं उनको सुनाने की हम कोई बात कर नहीं रहे। अब इसकी तशरीह क्या, इसकी तशरीह है कि भाई हमारी मजालिस के अंदर ज्यादातर उस कौम के ऊपर तंज और उस कौम के ऊपर एतराज और तनकीद होती है जो यहाँ पर बैठी ही नहीं है। तो जिसको हम सुनाने में वक्त लगा रहे हैं वो है ही नहीं, और जो है उसके लिए कुछ कह नहीं रहे। न वो तब्दील हो रहा है न ये बेहतर हो रहा है। मैंने एक काम शुरू किया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो गायब है उसको सुनाने की कोई कोशिश नहीं की है, भाई जो है उसको सुनाया है, तो उसके काम के लिए कुछ ना कहें जो है ही नहीं यहाँ पर, जो सुनने कोई नहीं आया है ना वो सुनने की कोशिश कर रहा है, तो जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए बात की जाए। तो हम किसी और से कोई खिताब अब नहीं करते, हम जितना भी खिताब करते हैं अहले बैत के चाहने वालों से। एक बात तो ये सोची, दूसरी एक और बात सोची, मुझे कि भाई इतना खिताब किया, इतना खिताब किया, इतना खिताब किया, अखलाक बेहतर नहीं हुए। इल्म तो शायद बढ़ गया हो, अलबत्ता जिस इल्म के पीछे अमल ना हो वो इल्म भी नहीं होता, वो इल्म होता ही नहीं है एक्चुअली। तो हमें ये बात समझ में आई वो ये कि अगर हमने कोई काम करना है तो हमें सिर्फ इल्म की बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि इल्म के साथ अमल की बात होनी चाहिए, और अमल की बात भी ऐसी होनी चाहिए कि कोई ये ना कहे इस पर अमल करने के लिए पता नहीं कितने अरसे कहीं इंतजार करके जाना पड़ेगा। नहीं, अमल की बात भी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से निकलने वाले को पता हो कि आज मुझे अमल की बात क्या पता चले, फौरन शुरू कर। और ये काम इसलिए करने, खास कर आपके जैसे लोग कि जो جس کو ہم لوگ مغربی دنیا کہتے ہیں اس میں رہ رہے ہیں، خاص کر آپ لوگ اس وجہ سے یہ کام کر لیں کہ اذان محترم، آپ جرمنی کی گاڑی کیوں لیں گے؟ بھائی پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، جرمنی کی گاڑی کا ایک معیار ہے، اس کی ایک مارکیٹ ہے، صحیح؟ تو یہ جرمنی کی گاڑی کیوں لے جاتی ہے؟ لوگوں کو جرمنی سے عشق نہیں، جرمنی کے نام سے محبت ہے نہیں، نہ جرمنی سے عشق ہے نہ جرمنی کے نام سے محبت ہے، لوگوں کے سامنے صرف ایک معیار ہے، کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروڈکٹیویٹی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایفیشنسی۔ اگر گاڑی اچھی ہے اور میرے کام آ رہی ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے جرمنی کی بنی ہے جاپان کی بنی ہے، میں وہ لوں گا جو میرے کام آئے گی۔ میں آپ سے جو خطرناک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دین میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے سامنے وہ دین چلے گا جو ان کے کام آئے گا۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ دین ہم تذکرہ کر رہے ہیں تمہاری زندگی میں یہ کام نہیں آئے گا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے، اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، تھوڑی سی سخت مثال لگے گی آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں میرے پاس میرے دادا کے زمانے کی ایک گاڑی کھڑی ہو، اور میں نے اس احترام میں کھڑی کی ہوئی ہے کہ میرے والد نے بھی کھڑی کی تھی، چلتی نہیں ہے، دادا کے نام کی ہے، دادا کے زمانے کی ایک گاڑی ہے جو اب چلتی نہیں ہے، میرے والد نے بھی ساری زندگی کھڑی رکھی تھی پارکنگ لاٹ کے اندر چونکہ ان کے والد کی تھی، چلو میں نے بھی کھڑی کر لی چونکہ میرے والد نے کھڑی کی تھی۔ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کتنی نسل تک یہ گاڑی یہاں رہے گی؟ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا بچہ بھی اس گاڑی کو کھڑا رکھے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ گاڑی اس کے کیا کام آئے گی، ثابت کریں۔ اگر کسی کام نہیں آنے کی ہے، تو پھر آپ کا بچہ کچھ عرصے انتظار کرنے کے بعد پارکنگ لاٹ کو خالی کرنے کی خاطر اس گاڑی کو کہیں روانہ کر دے گا۔ آپ اس سے پہلے کہ یہ گاڑی کہیں روانہ کرے، اس کے سامنے ثابت کر دیں یہ گاڑی کارآمد ہے، صحیح ہے؟ اگر آپ کو اپنے بچوں کو دین دینا ہے، چھوٹا سا ایک کام کر لیجیے جس میں اس دین میں اس کی طاقت ہے، وہ کیا؟ یہ ثابت کر دیں یہ دین تمہاری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ دین ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس دین سے ہماری زندگی میں وہ کچھ حاصل ہو رہا ہے جو بغیر دین کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس دین کے سوا کہیں نہیں۔ لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے، بلکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے الٹا ثابت ہو گیا کہ بھائی جب ہم دین کے نام پہ آتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، اور دین کا نام نہیں لیتے تو سب صحیح رہتا ہے، تو پھر آپ کے لیے دین کی گاڑی میں ان کو بٹھانا ناممکن ہو جائے گا۔ مثلا ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ عرض کروں گا۔ مثلاً یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ اسکولوں میں جاتے ہیں، جس کو ظاہر ہے ہم لوگ یہاں کنڈر گارڈن کہتے ہیں، یہاں تو کچھ اور کہتے ہوں، یہاں بھی کنڈر گارڈن، چلو بس صحیح، اچھا ہو گیا معاملہ ختم۔ یہ جو کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں یا ہمارے سینٹر؟ یہ جو کنڈر گارڈن ہے یہ زیادہ آرگنائزڈ ہیں یا ہمارے سینٹر؟ اگر ان کے کنڈر گارڈنز ہمارے سینٹر سے زیادہ صاف ہیں اور وہ زیادہ آرگنائز ہیں، تو ہمارا بچہ کہے گا کہ تم لوگ تو مسلمان ہو لیکن اسلام وہاں ہے، وہی کہے گا، آپ سے زبان سے نہیں کہے گا، اندر دل سے کہے گا۔ پھر آپ کے لیے اس نسل کو سینٹر میں لانا ناممکن ہو جائے گا۔
नहीं लाता, नाउज़ लाता। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके से ज्यादा प्रोडक्टिव अपने सेंटर को बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपने बच्चों से कहें कि देखो बेटा, दीन ने हमें वो कुछ दिया है जो बेदीन लोगों के पास नहीं है। तब आपके बच्चे खुद ब खुद घिसट घिसट के यहीं पर आएंगे, यहां पे आएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन तमाम उसूलों के साथ आपको दीन को देखना पड़ेगा, इनके साथ दीन को लेके चलना पड़ेगा। इस चैप्टर को क्लोज करने की खातिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये जमाना दलाइल का जमाना नहीं है, फलसफे का जमाना नहीं है। यहां सिर्फ एक दलील चलती है, कारामद है या नहीं। कारामद है वो चीज चलेगी, कारामद नहीं है वो चीज नहीं चलेगी। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये भी अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि मेरे नजदीक दीन में से जो कारामद मेरे काम आया है वो क्या है, ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूंगा, ताकि आपके पास अमली तौर पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाएं जिससे आपको समझ में आए कि भाई इस दीन के अंदर ताकत कहां है, इस दीन की असली ताकत है कहां पर, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अब बिला ताखीर, बड़ा आपका वक्त दे चुका हूं, मुबाहला के ऊपर आते हैं। इसमें एक अंदाज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, उससे हटकर के जो आप हमेशा इसमें सुना कर रहे हैं, दुरूद भेजिएगा मुहम्मद मैंने बचपन से, मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया कि मजालिस में, मकासदों में, महाफिल में शिरकत की। जब पहली दफा गदीर सुनी तो जाहिर है कि इंतहाई लुत्फ आया, और लुत्फ आया। दूसरी दफा गदीर सुनी तब भी बहुत लुत्फ आया। दसवीं दफा के बाद मेरे जहन ने कहा कि अब आगे क्या होना है। अब मेरी उम्र 50 साल के करीब, मैं अपनी जिंदगी में जितनी मेरी उम्र है कम से कम इससे तो ज्यादा ही दफा गदीर सुन चुका हूं, सही। और अब मेरा जहन हमेशा एक बात कहता है, इससे बाद वाली बात कब बताओगे? आपका जहन फौरन उनसे कहेगा, भाई इसके बाद कौन सी बात हो सकती है। हाँ, मैं भी अर्ज करता हूं, इसके लिए एक वाक्या सुना देता हूं। हमारे एक जानने वाले हैं मौलाना अनवर अली साहब, न्यूयॉर्क के अंदर। मौलाना साहब तशरीफ लाए एक दफा कराची, तो हम लोग चंद नए उस जमाने में ईरान से वापस आए थे पाकिस्तान, ये तकरीबन 2000 के करीब कोई बात है, मैं 96 में पाकिस्तान वापस आया था, तो अब मुझे तकरीबन 20 साल होने को आ रहे हैं पाकिस्तान। तो उस जमाने में हम लोग तकरीबन नए नए आए थे, तो एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे मौलाना अनवर अली साहब न्यूयॉर्क वाले, वो भी तशरीफ लाए हुए थे, तो उन्होंने एक वाक्य सुनाया। कहने लगे कि मैं एक दफ़ा अपने ऑफिस में था, तो एक नया मुसलमान अमेरिकन मेरे पास आया, और उसने, जिसको हम लोग गोरा कहते हैं, वो आया, उसने खालिस अमेरिकन लहजे में मौलाना साहब से कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हुआ कि ये नया मुसलमान जो है वो यहाँ पर आया है कुछ पूछने के लिए। तो उसने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना, क्या आपने वो रिवायत सुनी है, अना मदीनतुल इल्म व अलीहुम बाबा। तो मौलाना ने कहा, मैं दिल में हंसा, और मैंने उससे सोचा कि कहूँगे बेटा बचपन से यही सुन रहे हैं, यही सुना रहे हैं, तो अब तुम नए नए आए हो हमें सुनाने के लिए कि आपने ये सुनी है। तो मौलाना ने कहा कि हाँ बेटा सुनी है, अना मदीनतुल इल्म व अलीहुम बाबा। तो उसने कहा कि इसका मतलब यही है ना, फिर उसने ट्रांसलेशन सुनाया कि इसका मतलब यही होता है ना। उन्होंने कहा हाँ जी यही होता है। तो फिर कहने के उसने एक जुमला कहा जिसपे मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। अब मैं भी वो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं। उसने ये कहा कि मौलाना 1400 साल से ये तो आप कह रहे हैं कि वो बाबुल इल्म है, खटखटा के अंदर कब जाओगे। अब देखिए जुमले के अंदर गहराई क्या है कि भाई 1400 साल से कह रहे हो कि हम बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, ये बताओ इल्म है तुम्हारे पास? उस इल्म में से कुछ जर्मन सोसाइटी को भी दे दो, जर्मन सोसाइटी को देने के लिए उस इल्म में से क्या है, दो ना। आप देखिए हमने अपने सेंटर्स क्या बनाए, हमने अपने सेंटर्स बनाए अपने दीन की हिफाजत के लिए ऐसे जजीरे जिस पे कोई जर्मन खड़ा ना हो सके, सिर्फ हम ही खड़े होंगे, ये हमारे सेंटर्स हैं। ये हमने इनकी जमीन पे जजीरे बनाए हैं कि जब हम परेशान हो जाएं तो अपने इस जजीरे में आकर पनाह ले लें, और इस जजीरे में कोई जर्मन आएगा नहीं, उसके लिए नहीं बनाई, ये हमारे अपने लिए बनाए, तो उसको पैगाम कौन देगा? आप तो जरूर समझे, ये हमारा दिफाई मोर्चा है, उनको देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि तुम ही से बचने के लिए तो मोर्चा बनाया है हमने। है कि देखिए ना, आपने ये मोर्चा क्यों बनाया है? ये मोर्चा इसलिए बनाया कि आपका दीन कहीं हाथ से ना चला जाए। सर, किससे बचने के लिए मोर्चा बनाया है? या नॉन से बचने के लिए। तो तुम इनसे बच बच के कब तक जाओगे? इनको देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? दे देते भाई। मैंने फुटबॉल से हमेशा नफरत की है, माजरत के साथ, जो फुटबॉल के चाहने वाले उनसे, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट देखता था, मुझे फुटबॉल पसंद ही नहीं आती थी। मैं ईरान में रहा 10-12 साल, वो लोग फुटबॉल के क्रेजी थे, मुझे फुटबॉल फिर भी पसंद नहीं आई, कभी पसंद नहीं आई। फिर जब मेरे अपने बच्चे हुए और वो सारे के सारे फुटबॉल के आशिक हो गए, तो मुझे इस मनफूर को पसंद करना पड़ गया। भाई मैं क्या करता? अब एक मेरा बच्चा एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का चाहने वाला है, एक उसका चाहने वाला है, एक इसका चाहने वाला, अब मुझे उनके दरमियान बैठ के कुछ बात तो करनी है मिला, तो मुझे भी सोचना पड़ा कि भाई अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में कौन है, अब कभी मैनचेस्टर गया तो स्टेडियम के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवा के अपने बच्चों को दिखाया कि देखो मैं भी तुम्हारा ही वाला हूँ। क्या करूँ? तो मुझे फुटबॉल में और क्रिकेट में सब गेम्स के अंदर एक बात समझ में आई है, वो ये कि कोई भी टीम अगर ये तय कर ले कि हमने सिर्फ डिफेंड करना है, ये टीम हार जाएगी। ये टीम हार जाएगी। कोई भी टीम 1.5 घंटे अपने डी का डिफेंड नहीं कर सकती। ये कभी मिस्टेक करेंगे पेनल्टी मिल जाएगी, कभी मिस्टेक करेंगे इनकी बॉल अंदर जाएगी। अगर किसी बैट्समैन ने ये सोचा है कि मैं पूरी इनिंग्स में सिर्फ डिफेंड करूंगा, एक बॉल पे गलती करेगा और आउट होगा, सही है? आप और मैं वो कौम है जो मगरिब में रहकर डिफेंड करने को पॉलिसी बनाए बैठे। हमने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम डिफेंड करेंगे। दुनिया में गेम्स में भी कोई नहीं जीतता इस तरह। तो आपको क्या करना होता है? आपको पार्शियली डिफेंड करना होता है और कुछ कुछ अटैक भी करना होता है, कुछ कुछ आगे बढ़ना होता है। अच्छा भाई, दीन के मामले में कैसे होगा? डिफेंड तो करो कि दीन हाथ से ना निकल जाए, लेकिन इस कौम के सामने ये भी साबित करो कि हम भी कुछ हैं। साबित करो, अगर कोई बैट्समैन बैटिंग करते हुए बॉलर के ऊपर अपना रोब ना डाल सके तो बॉलर के रोब में आंखें मर जाता है। ये होता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, जितने दोस्त सहबाब यहां पर हैं जो 30 साल से भी हैं, एक दफा मुझे बताएं वो पॉइंट जिसमें आपने जर्मन कौम के सामने आकर ये कहा हो कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। ये आपने कब कहा और किस अंदाज में कहा? अगर नहीं कहा तो इसका मतलब क्या है? आप वो बैट्समैन है जो सिर्फ डिफेंड कर रहा है। डिफेंड करता हुआ बैट्समैन नहीं जीत पाता। अज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, क्योंकि आप ट्रांजिशनल पीरियड में हैं, यहां से निकल के कहीं और जा रहे हैं, फौरन कोई एक फोरम ऐसा बनाइए जिसके अंदर आपके अकलमंद पढ़े लिखे लोग जर्मनी की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कर सकें इल्म की सतह पर, और उनसे जाकर कह सकें कि हम बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, इल्म हमारी मीरास है। यह आपको करना पड़ेगा, और अगर खुदा ना करे आपने ये नहीं किया, आपकी सही आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। आपकी आइडेंटिटी सही नहीं बनेगी। तो ऐजान मोहतरम एक कदम आगे बढ़ने की सोच लीजिए अभी से। अच्छा, अब आपके साथ मुश्किल क्या है? आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कहेंगे मौलाना वो बंदे तो लाकर दें जो इनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, और मामला जर्मन लैंग्वेज का नहीं है, मामला इल्म का है। जर्मन लैंग्वेज तो किसी को भी 4 महीने 6 महीने में सिखाई जा सकती है, इल्म का मामला। ये देखिएगा कि आपके अंदर इसकी डिमांड होनी चाहिए। इस दुनिया में साहिबान इल्म अहले बैत के चाहने वालों की कमी नहीं है। आपके पास वो फोरम होना चाहिए जिसमें आप ऐसे साहिबान इल्म को जज कर सकें, उन साहिबान इल्म को एक फोरम दे सकें जिस पर वो जर्मन कम्युनिटी के साथ डायलॉग कर सकें। ये जो फोरम होगा ये आपकी निशानी बनेगी इस कम्युनिटी के अंदर, और उस फोरम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जर्मन्स को ये पता हो कि जो मसला हम नहीं हल कर पाएंगे वो इनके लोग कर लेंगे। अगर आप ये कर सके तब आपकी निशानी इल्म और बाबुल इल्म के मानने वालों पर है। और अज़ान मोहतरम मुझे पता है कि ये काम आज नहीं होगा, अगले सालों में भी नहीं होगा, लेकिन मुझे कतअन पता है कि ये किसी ना किसी नस्ल के हाथों होगा। ये काम कतअन होना है। आप जितनी जल्दी इसी नस्ल में शुरू कर लें बेहतर है। और ये वो कमी है जो हमने अब तक एहसास नहीं की थी, और अब मेरे सामने बिल्कुल कंफर्म है कि ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अज़ान मोहतरम अपने सेंटर के फंक्शनैलिटी के ऊपर एक बेसिक रिव्यू कर लीजिए। आपके सेंटर्स के मेन फंक्शनैलिटी यानी अमल क्या है इसका? आपका अब तक का जो अमल बनता है वो दीन के मरासिम को अंजाम देना है, और ये वही डिफेंड करने वाली हिकमत अमली है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये बहुत ज्यादा अरसे कारामद नहीं रहती। तो अज़ीज़ान मोहतरम बराए मेहरबानी आप में से साहिबान फिक्र हैं, साहिबान शऊर हैं, लंबी मुद्दत को सोच सकते हैं, वो इस पर जरूर तवज्जो फरमाएंगे। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाला। साहब का जवान उनके पास आया, उसने कहा कि भाई मौलाना साहब खटखटा के अंदर कब जाएंगे? मौलाना साहब परेशान हो गए, वाकई सही बात तो सही कह रहा है, बड़ी तासुर अंगेज बात भी है। तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि भाई मैंने मुबाहला का वाकया कितनी दफा सुना है? सैकड़ों ना भी हुआ हो तो दसवीं दफा तो सुना ही है। और यहां पे जितने लोग मौजूद हैं सिवाय चंद बच्चों के, उन सब ने वो वाकया कसरत से सुना है। सही। अब मैं एक काम करना चाह रहा हूं, वो ये कि थोड़ा सा आगे बढ़कर उस वाकये की बुनियाद पर जो आपने सुना हुआ है इससे एक पैगाम लेना चाह रहा हूं। अच्छा, मेरी कोशिश क्या होती है? मैं क्योंकि मजबूरी है, मैंने आपसे कहा ना बात चीजें आपको बेरब लगेंगी क्योंकि वक्त कम है और ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कोशिश क्या है हमारी? हमारी कोशिश ये है कि हमारा दीन तारीख में ना रहे, तारीख से सीख कर हम अपने हाल के ऊपर उसको इंतलाक कर सकें, ये हमारा दीन होना चाहिए। मैं एक दफा एक मजलिस के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक्य सुना रहा था। कराची यूनिवर्सिटी के एक बड़े नामी गरामी प्रोफेसर हैं जिनकी हमसे नहीं बनती, हम मौलवी हजरत से उनकी नहीं बनती, बहुत काबिल आदमी है लेकिन एक अजीब मिजाज है उनका, उनकी हमसे नहीं बनती। इत्तेफाकन वो मजलिस के हाजरीन में मौजूद थे और मुझे पता था कि अब थोड़ी देर के बाद मजलिस के बाद एक गुफ्तगू शुरू होने वाला है, तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वाकया सुना दिया। बहरहाल किसी भी वजह से वो साहब हमारा जाती तौर पर ख्याल करते थे, मजलिस के बाद हमारे पास आए कहने की मौलाना बहुत बढ़िया, आपने उम्र में मुझसे डबल के करीब थे उस वक्त, कहने की आपने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूँगा। मैंने कहा मैं ध्यान में सोचा कि मैं पहले से सोचे हुए था कि ये लेकिन आने वाला है। उन्होंने कहा लेकिन मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ये जो आप वाकयात सुनाते रहते हैं ना, सिर्फ वाकयात सुनाने पर ना गुजरे, सिर्फ वाकयात सुनाने पर ना गुजरे। क्यों? کہنے کی جو قومیں صرف واقعات سنتی رہتی ہیں وہ تاریخ میں پڑے رہ جاتے ہیں، ان کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیا کریں پھر؟ کہنے کی بھائی آپ ان کو تاریخ سنائیں لیکن تاریخ کو نکال کر آج کی زندگی پر بھی اس کا اطلاق کریں، آج کی زندگی پر بھی لے کر آئیں. تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے غلطی سنی؟ یقیناً سنی. کتنی دفعہ؟ دسیوں دفعہ. آج کی زندگی پر اس کا اطلاق کیا ہے؟ آپ نے خیبر سنی؟ سنی. کتنی دفعہ؟ دسیوں دفعہ. آج کی زندگی پر اس کا اطلاق کیا ہے؟ مباہلہ سنی؟ ہاں سنی. اطلاق کیا ہے؟ اچھا جیسے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس واقعے کا آج کی زندگی پر اطلاق کیسے ہوگا، تو فوراً ایک کام کرنا پڑتا ہے، اس واقعے کی کون سی ایسی بات ہے جس کا تعلق آج کی زندگی سے ہو. ورنہ بھائی دیکھیں نا، آپ غدیر مخوم کے میدان میں واپس جائیں گے کہ آپ 1400 سال پہلے ظاہرے کہ نہیں؟ آپ خیبر کے میدان میں 1400 سال پہلے واپس جائیں گے کیا؟ ظاہرے کہ نہیں. آپ کا ٹائم تو گزر گیا، تو آپ کربلا کے میدان میں واپس جائیں گے کیا؟ نہیں، وہ بھی نہیں، آپ کا ٹائم گزر چکا ہے. اب اس کا اس سے تعلق بنے گا کیسے؟ وہاں سے ایک پیغام نکالیں، اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. میں تو جلدی جلدی یہ کام کر کے دیکھتا ہوں. مثلا میں نے اپنے بچوں کو خیبر کا واقعہ سنایا، بچوں کو خوب اچھی طریقے سے سنا دیا، انہوں نے مولا امیر المومنین کے فضائل کو سن لیا، مولا امیر المومنین کی شجاعت کو سنا. تھوڑی دیر میں میں نے اپنے بچے سے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ تم نے خیبر سے کیا سیکھا؟ اچھا اگر میرا بیٹا کہے کہ بابا جی ہم نے خیبر سے یہ سیکھا کہ اس زمانے کے یہودی امیر المومنین سے شکست کھا گئے تھے، کہوں گا ہاں یہ تو سیکھا، یہ بتاؤ اپنے لیے کیا سیکھا؟ اپنے لیے کیا سیکھا؟ یہ تو تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ ان کو شکست ہوئی مولا امیر المومنین کے ید الہی سے، اور مولا امیر المومنین کی فضیلت پہ درود بھیجے محمد والے. یہ بتاؤ تم نے خیبر کا ماننے والا ہونے کے ناطے تم نے کیا سیکھا؟ مثلا اگر وہ مجھ سے کہے میں نے خیبر کا ماننے والا ہونے کے ناطے یہ بات سیکھی کہ مجھے شمشیر زنی آنی چاہیے، تو کیا یہ میسج صحیح ہے؟ کیا مجھے شمشیر چلانا آنی چاہیے؟ کیا یہ میسج صحیح ہے؟ میں کہوں گا نہیں بیٹا یہ میسج صحیح نہیں ہے. پھر وہ کیا سیکھے؟ ہاں اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو خیبر کو سننے کے بعد سیکھنا چاہیے کہ میرے مولا نے مجھے شجاعت ارث میں دی ہے، شجاعت میرے اندر ہونی چاہیے. اب یہ جو شجاعت ہے یہ آج کی دنیا پہ اطلاق ہوگی. میں اپنے بچے سے کہوں گا دیکھو بیٹا میں نے تم کو خیبر سنائی، تم اس مولا کے ماننے والے ہو جس نے خیبر کا واقعہ کیا، تمہیں شجاع ہونا چاہیے، تمہارے خون کے اندر یہ گرمی ہونا چاہیے جو تمہارے مولا نے تمہیں دی. اب اگر میرا بیٹا مجھ سے کہے، میری اولاد مجھ سے کہے ہم خیبر کے ماننے والے، ہمیں خیبر بڑی اچھی لگی لیکن بابا جی ہمیں بزدلی ہے، تو میں کہوں گا نہیں تم پھر خیبر کے ماننے والے نہیں، تم نے خیبر سے کچھ نہیں سیکھا. اگر تم نے خیبر سیکھی ہوتی تمہارے اندر بزدلی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارے اندر شجاعت ہونی چاہیے تھی. یہ خیبر ہو گئی. اگر کسی نے غدیر سیکھی ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ سے نکل کے حال پہ لائے. اگر کسی نے غدیر سیکھی ہے تو اس کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے جانشین امیر المومنین خلیفتہ بلا فصل. بس نہیں، ایک اور بات، آج بھی حق کے حکومت علی اور اولاد علی کے لیے ہے. صحیح غدیر سیکھی ہو اسے ظہور کا انتظار کرنے والا ہونا چاہیے، اسے امام کی نصرت کے لیے پیش پیش ہونا چاہیے کہ وہ جو حق کے غدیر مولا امیر المومنین کے لیے اعلان ہوا اس حق پر آج تک عمل نہیں ہوا. اگر کوئی غدیر کو سنے اور غدیر سے پیغام لے تو اسے یہ ہونا چاہیے. بس خیبر سے شجاعت لے، غدیر سے ولایت لے، موبائلہ سے کیا لے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی میں موبائلہ کا یہ پہلو نہیں سنا ہوگا. کیوں؟ آپ نے تاریخ سنی ہے، تاریخ کا حال پہ اطلاق نہیں سنا. کیوں ہم اپنے بچوں کو خیبر شکر نہیں دیکھ پا رہے؟ موبائلہ سے کیا سیکھوں؟ اب میں موبائلہ کا واقعہ تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں تاکہ اس سے سیکھتے ہوئے ہم اس دور کے اندر آ سکیں. درود بھیجے گا محمد والا. جنگ خیبر میں ایک یہودی قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا. مولا امیر المومنین کو پرچم ملا، مولا امیر المومنین نے وہ قلعہ فتح کیا. جنگ تھی، جنگ شمشیر کی، جنگ فوجوں کی، جنگ جنگ کے خندق کے اندر دشمن نے حملہ کیا، اس کے پہلوان خندق کو کراس کر کے اس طرف آ گئے. مسلمانوں کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی، مولا امیر المومنین تشریف لے گئے، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا. جنگ تھی، لشکروں کی جنگ. کیا نجران نے حملہ کیا تھا؟ نجران قلعے میں محاصرے میں بیٹھے تھے، مسلمان فتح کرنے گئے تھے. تو جنگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں. اس معنی میں نجران کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی. پھر مباہلہ کیوں ہوا تھا بھائی؟ جنگ ہو تو کوئی بات آگے بڑھے، یا ہم وہاں پر جائیں حملہ کرنے خیبر کی طرح، یا وہ یہاں پر آئے حملہ کرنے خندق کی طرح. نہ نجران حملہ کرنے ہم پر آئے، نہ ہم نجران پہ حملہ کرنے گئے، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نجران عیسائی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی معنویت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کا خدا سے ایک رابطہ تھا، اس رابطے میں وہ معجزے کرتا تھا، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا خدا سے ایک رابطہ ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہم اہل نجران ہیں، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، ہمارا خدا سے ایک رابطہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ بات کرو ہماری نبوت کی. وہ آئے، نبوت کے اوپر بات کی، دلائل دیے گئے، انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ہماری جنگ کی کوئی بندش نہیں ہے، ہمارا تمہارا رابطہ جنگ کا نہیں ہے. ہمارا تمہارا رابطہ کیا ہے؟ تمہارا معنویت کا دعویٰ ہے، نہ خدا سے رابطے کا دعویٰ ہے. آؤ اس پر آ کر مقابلہ کرتے ہیں. خیبر کی طرح شمشیر دے کر نہیں بھیجیں گے، خندق کی طرح گھڑ سوار نہیں جائیں گے. تم بھی معنویت کے دعوے دار ہو، تم میدان میں آؤ، خدا سے رابطہ ثابت کرو. ہم بھی معنویت کے دعوے دار ہیں، ہم میدان میں آئیں گے، خدا سے رابطہ ثابت کریں گے. اب یہ اس خاندان کی فضیلت ہے کہ جنگ میں بھی ماہر یہی ہے، دعوے معنویت میں بھی ماہر یہی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے نجران نے دعوے معنویت کیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم جو دعوے معنویت کرو نا، اس سے زیادہ معنویت ہمارے پاس ہے، ہمارا خدا سے رابطہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے، مقابلہ ہوگا. مقابلہ کیسے ہوگا؟ تم بھی خدا کو پکارو، ہم بھی خدا کو پکاریں گے. تم بھی خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہم بھی خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اور پھر یہ کہیں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. ہم گڑ گڑانے میں سچے ہوئے تو تم پہ نام ہو جائے گی. آتے ہو اس مقابلے پہ؟ انہوں نے کہا آئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اب مقابلہ ہوگا. تمام تر تفاصیل کے ساتھ اللہ کے رسول میدان مقابلہ کے اندر پہنچے. نجران خیبر اور خندق کے دشمنوں سے کہیں زیادہ عقل مند ثابت ہوئے. وہ جو خیبر والے تھے، اس کی ماں کو بتایا تھا، اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ حیدر سے نہیں جیت پاؤ گے. وہ پھر بھی بیوقوف آ گیا تھا. اور یہ جو مکہ والے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم کے اصلی جانشین اللہ کے رسول ہیں. پھر بھی بے وقوف مقابلے پہ آئے، پھر بھی ہارے. نجران والے عقل مند تھے، نجران والے عقل مند. البتہ اتنے عقل مند بھی نہیں تھے کہ مسلمان ہی ہو جاتے، اتنے عقل مند بھی نہیں تھے. لیکن تھے بہرحال عقلمند، جیسے ہی میدان کے اندر مقابلے پر آئے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم جو معنویت کا کھوکھلا دعویٰ کر کے آئے تھے، اب جو میدان میں آئے ہیں یہ معنویت کے مالک ہیں، جو دعوے دار ہیں یہ مالک ہیں معنویت کے. انہوں نے فوراً ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی ان سے مقابلہ نہیں کرنا. کیوں؟ ٹھیک ہے کہ ہم معنویت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی معنویت ایسی ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں بد دعا کری. ایک بات آپ کی خدمت میں، زلزلوں، سیلاب، طوفان اور عذاب الہی کا فرق بتا دوں. ایک تو جب کہیں کہیں زلزلہ آتا نا، فوراً لوگ کہتے ہیں عذاب آ گیا. عزیزان محترم، ایک بات عرض کر دوں، جب عذاب خدا آتا ہے تو پھر وہ قوم، وہ نسل قیامت تک کے لیے محو ہو جاتی ہے، دوبارہ نہیں بنتی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، زلزلہ آیا، ایک شہر گرا، دوبارہ بن گیا، یہ عذاب الہی نہیں ہے. اگر یہ عذاب الہی ہو تو پھر اس کے مٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اہل نجران اس حقیقت کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے خدا سے دعویٰ کر دیا، خدا سے کہہ دیا، خدا نے ہم پر عذاب بھیج دیا، نجران قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے. اچھا صاحب، قصہ مختصر کر، وہ میدان جنگ میں ہار گئے. جنگ کس کی تھی؟ جنگ تھی معنویت کی. تو مباہلہ کا پیغام کیا ہے؟ خیبر کا پیغام شجاعت ہے، غدیر کا پیغام ولایت ہے، مباہلہ کا پیغام معنویت. اگر کوئی بچہ خیبر کو سنے اور کہے مجھے شجاعت نہیں آتی، تو میں کہوں گا تم خیبری نہیں ہو. اگر کوئی مباہلہ سنے اور کہے ہمیں معنویت کی خبر نہیں ہے، تو مجھے اس سے کیا کہنا پڑے گا؟ تم اہل خیبر نہیں ہو. اگر اہل خیبر ہوتے تو تمہارے اندر شجاعت ہوتی، اگر تم اہل مباہلہ ہوتے تو تمہارے اندر معنویت کیوں نہیں ہوتی؟ تم نے مباہلہ سے کیا سیکھا؟ عزیزان محترم، جب میں اس جگہ پہنچتا ہوں نا، تو مجھے یوں لگنے لگتا ہے جیسے ہماری قوم کے 25-30 سال کہیں پہ رضایا ہوگا. مجھے یوں لگنے لگتا ہے. یہ مباہلہ کی الف بے ہے، اور ہماری قوم کو ابھی الف بے پتہ نہیں چل پائی. یہ ستم کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ اچھا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آج کی جیسی شب مثلا مباہلہ کا پیغام آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اس گارنٹی کے ساتھ عرض کیا تھا کہ شاید ہی کسی نے کبھی مباہلہ کو اس انداز سے سنا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ تاریخ میں زندہ ہیں، تاریخ کو نکال کر عصر حاضر میں لانے والے نہیں. اچھا، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ شام میں تاریخ میں زندہ رہنے دو، تو میں ان سے صرف ایک جملہ کہوں گا، اگلے امام نے جو تشریف لانا ہے وہ تاریخ میں نہیں آنا ہے، حاضر میں آنا ہے. ان امام مظلوم کو جو شجاعت چاہیے، خیبری شجاعت، آج چاہیے ہوگی، تاریخ میں نہیں چاہیے. ان امام کو اپنے ماننے والوں میں جو مباہلہ کی معنویت چاہیے، آج چاہیے، پیچھے نہیں چاہیے. آپ کے اور میرے اندر اگر وہ معنویت نہ ہوئی، وہ شجاعت نہ ہوئی، وہ ولایت کے لیے تڑپ نہیں ہوئی، تو ہم اپنے امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر تیزی سے چند باتوں کو بیان کرنا ہے، وقت ختم، لیکن چند باتوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. معنویت کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات، یہ صرف علم کی بات نہ ہو کہ معنویت کیا ہوتی ہے، جبروت کیا ہوتی ہے، ملکوت کیا ہوتی ہے، نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو معنویت کیسے ملے گی. اور آپ مجھ سے یہ نہیں کہیے گا کہ مولانا یہ معنویت کی باتیں ہم سے مت کریں، یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. اگر آپ اہل خیبر ہیں تو شجاعت آپ کی فیلڈ ہے، اگر آپ اہل مباہلہ ہیں معنویت آپ کی فیلڈ ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ आप अपनी इर्स और मीरास से दूर हैं, आपको इसके अंदर आना चाहिए। अच्छा, अभी मानवियत कैसे आती है? मानवियत कहते किसे हैं? सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि पहले अगर ये चीज क्लियर हो जाए कि है क्या, तो उसे ढूंढना भी आसान हो जाता है। जैसे यही पता ना चले कि ये है क्या, तो बेचारा क्या ढूंढेगा उसे। एक वाक्य सुनाता हूँ, छोटी सी किताब है, उर्दू में पहले तर्जुमा हुई थी, फिर उसने खुदा को पा लिया इस नाम से, फिर बाद में तर्जुमा होकर उसका नाम रखा गया फिर मैंने खुदा को पा लिया। दोनों सूरतों में किताब एक ही है। फारसी में इस किताब का नाम था कीमियाए सआदत, और ये एक आरिफ थे रजब अली खयात, उनकी सबान हयात है। रजब अली खयात जाहिरी तौर पर जैसे कि नाम से वाजे है, एक दर्जी थे, तेहरान में रहा करते थे आज से तकरीबन 40-45 साल पहले, आरिफ आदमी थे। और ये इतने बड़े आरिफ थे कि जो उस जमाने के बड़े बड़े इबादत गुजार थे, इनकी ड्यूटी थी कि उनको जाके नसीहत करें। इबादत गुजारों को जाके नसीहत करते थे कि तुमने फला काम जो किया ना वो सही नहीं किया, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इनका एक शागिर्द बयान करता है, कहता है कि एक दफा रजब अली खयात मुझसे कहने गए कि भाई हमें फला पहाड़ी के ऊपर जाना है। तो उसने कहा सरकार चले। वो लोग चले गए, 40-45 साल पहले बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, तो वहां पर एक साहब इबादत गुजार मौजूद थे। तो रजब अली खयात उनके सामने पहुंचे और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो इबादत गुजार थे उनसे पूछा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो जहाँ पे बैठे हुए थे वहां कुछ पत्थर पड़े हुए थे, तो उस बंदे खुदा ने जो इबादत गुजार था उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर रजब अली खयात के हाथ में पकड़ाया। रजब अली खयात ने हाथ में जब पकड़ा तो वो नाशपाती हो चुका था, वो पत्थर नाशपाती बन चुका था। तो उसने कहा कि मैं ये कर रहा हूं। रजब अली खयात ने वो नाशपाती हाथ में ली, दोबारा इनके हाथ में पकड़ाया तो वो पत्थर हो चुका था, और कहा कि ये तो जादू है, बताओ खुदा के लिए क्या कर रहा। कहा ये तो जादू है, ये बताओ खुदा के लिए क्या कर रहा हूं। मैं हाथ क्यों करूं ना इलायचियां लेकर आपके हाथ में पकड़ा दूं, ये मानवियत है, ये मानवियत है। आपने मुझसे कहा मेरी फलान चीज कहां है, मैंने आपको बता दी यहां पर है, ये मानवियत है, ये मानवियत। हमने इसको मानवियत समझा, नहीं मानवियत नहीं है। और एक और बात क्या सुनाता हूं, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद। एक आदमी का वाक्य बयान करते हैं, उसको बहुत ख्वाहिश थी, वो अपनी इबादतों में मशगूल थे, उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मुझे इसमें आजम पता चल जाए। बड़ी लोगों को ख्वाहिश होती है, हमारे खानदान में भी एक साहब थे, उनको बड़ी ख्वाहिश थी, पता नहीं कौन कौन से काम करते रहते थे दिन रात के, मुझे ये मिलने वाला है। और मैं सोचता था कि भाई ये तो क्या ही कर बार, तो वो उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको काश इसमें आजम पता चल जाए, उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़े आरिफ थे, उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे कि भाई मुझे इसमें आजम सिखाओ। तो उन्होंने बताया एक दफा, जो आरिफ थे उन्होंने कहा भाई मुझे इसमें आजम नहीं आता है, एक इस शहर में एक बंदा है उसे आता है, उसे आता है। तो अब इन्होंने इसरार करना शुरू कर दिया कि मुझे उनके पास ले चले, मैं उनसे इसमें आजम सीखूंगा। उन्होंने बहुत समझाया कि भाई अगर सीखना होता तो मैंने सीख लेता, मैंने नहीं सीखा, और वो आदमी जिसको ये आता है वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा। उन्होंने बड़ा इसरार किया कि नहीं भाई उनसे कहो कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। तो एक दफा जब इन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो इन्होंने जाकर उन साहब से जिनको इसमें आजम आता था ये कहा कि भाई वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि कल सुबह शहर से बाहर चले जाए, वहां पर एक दरवाजा है जिससे सारे काफिले अंदर आते हैं, उस दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाए, शाम तक वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा ठीक है। इनको सुना दिया गया कि भाई आपके लिए पैगाम आया कि आप शहर के दरवाजे के बाहर जाके खड़े हो जाइए, शाम तक वहीं खड़े रहिएगा। इनका इसमें आजम मिल जाएगा। उनका ये मुझे नहीं पता, उन्होंने आपके लिए ये कहा है, करना है कर ले, नहीं करना है आपको मत करें। उन्होंने कहा ठीक है भाई। वो अगले दिन गए, सुबह दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, दोपहर तक खड़े रहे, वहां कुछ नहीं हुआ, लोग आ रहे थे जा रहे थे, वो बेचारे खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने वाकया देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी था, वो शहर के अंदर आने वाला था, वहां जो बाहर आदमी बंदा खड़ा था उसने उससे कुछ पैसे मांगे कि इतने पैसे दो तो मैं शहर के अंदर आने दूंगा। उसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा पैसे नहीं तो मैं नहीं आने दूंगा। उसने इसरार किया कि मुझे आने दो, तो उसने उसको मारा, कोड़ा मारा। अब ये जो देखने वाला था इसको बेचारे को बहुत अफसोस हुआ कि यार देखो इसने बूढ़े के हाथ में, बूढ़े के ऊपर जुल्म भी किया और उसको कोड़ा भी मार दिया, उसके साथ ये कर दिया। उसके बाद शाम तक वो बेचारा खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। ये वापस आया शाम को इन साहब के पास कि भाई आपके कहने पे मैं सुबह से शाम तक खड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अच्छा बताओ तुमने सारे दिन में क्या देखा। कहने का क्या देखा, काफले आ रहे थे जा रहे थे, मामला खत्म। और कुछ देखा? कहने का हाँ एक वाकया देखा, एक बूढ़ा आदमी था वो अंदर जा रहा था, उसको इतना मारा वो वहां पे जो कोतवाल खड़ा था, निगहबान खड़ा था, अगर इसमें आदम पता होता तो मैं इस जालिम से हिसाब तो ले लेता कम से कम। तो उन्होंने कहा बेवकूफ जो पिटा था ना वही है जिसको इसमें आदम आता है, वो जो पिटा था उसी को आता था। तुम इसमें आदम को क्या करते, तुम ये करने वाले थे ना, उसको तो खुदा आता था, उसे नहीं किया। आजम हम लोग मानवियत को कुछ और समझ रहे हैं, हम लोग करामात को समझ रहे हैं मानवियत है। आपने सुना है जब कोई ईसाई पादरी होता है किसी बीमार को कहता है कोई खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता है। आते हैं पाकिस्तान, अगर आप इसको मानवियत कह रहे हैं तो फिर तो वो भी कर रहे हैं। हिंदुओं के पास चले जाइए, वहां पे आपको एक से एक इस टाइप की मानवियत के लोग मिल जाएंगे। ये मानवियत है नहीं, ये मानवियत नहीं है। अब आप ये हक रखते हैं, पूछे भाई मानवियत किसे कहते हैं, मानवियत किसे कहते हैं, ये बताएं कौन खुदा से कितना नजदीक है। पत्थर नाशपाती करे ना करे इससे कोई सरोकार नहीं, इलायची लाए या बादाम लाए इससे कोई सरोकार नहीं, खुदा से नजदीक है ये मानवियत है। इसको कहते हैं मानवियत। तौहीद उसके अंदर है, अल्लाह पे भरोसा उसके अंदर है, इसको कहते हैं मानवियत। आयतुल्लाह खुमैनी ने, एक थे आयतुल्लाह काजी तबतबाई, नजफ में होते थे, उनके लिए एक जुमला लिखा था और कहा था कि काजी तबतबाई तौहीद का पहाड़ थे, इसको कहते हैं मानवियत। एक बहुत बड़े आरिफ थे मिर्जा जवाद मलिकी तबरेजी, 35-40 साल पहले इंतकाल हुआ। मिर्जा जवाद मलिकी तबरेजी कौम में एक कब्रिस्तान है बीबी रोजे के बिल्कुल सामने, मार्केट के बिल्कुल बीच में, तो मार्केट की वजह से वो नजर भी नहीं आता लेकिन है वहां पर कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में दफन मिर्जा जवाद मलिकी तबरेजी। आजकल के जमाने में एक बड़े आरिफ हैं अल्लामा हसन ज़ादा आमोली नाम का। जब हसन ज़ादा आमोली जवान थे तो मिर्ज़ा जवाद मलिकी तबरेजी की किताबें पढ़ के बहुत खुश होते थे, तो उनको किसी ने बताया कि तुम जो मिर्ज़ा जवाद मलिकी तबरेजी की किताबें पढ़ पढ़ के खुश होते रहते हो, ये तुम्हारे बराबर में जो कब्रिस्तान है उसमें दफन है। यानी कि मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये वहाँ दफन है, तो मैं फ़ौरन उनकी कब्र पर जाता हूँ। तो यानी कि मगरिब से कुछ पहले का वक्त था, मैं उनकी कब्र ढूंढने के लिए उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। बहुत पहले की बात, उस जमाने में वहाँ पे कब्रें हैप रिजर्ट थी, वहाँ पे निशानियाँ भी नहीं थी, छोटी छोटी सी कब्रें बनी हुई थी। तो क्या नहीं है कि मैंने बहुत उस कब्र को ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली। तो मगरिब का वक्त होने लगा था, अंधेरा छाने लगा था, मैं वहाँ से कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा तो किसी ने मुझे पीछे से कहा कि हसनज़ादा मिर्ज़ा जवाद की कब्र चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, क्या नहीं कि वो जाओ वहाँ पे वो जो कब्र है ना वो मिर्ज़ा जवाद की कब्र है। तो वो गए मिर्ज़ा जवाद की कब्र पे, फातिहा पढ़ी उन्होंने। जब फातिहा पढ़ ली तो उनको अचानक याद आया कि भाई ये जो आदमी था इसको मेरा नाम कहाँ से पता चला कि मैं कौन हूँ, और इसको कैसे पता चला कि मुझे मिर्ज़ा जवाद की कब्र चाहिए। तो वो कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे वो साहब जिन्होंने आवाज दी थी, तो इन्होंने पीछे से चिल्ला कर कहा कि आपको कैसे पता चला मेरा नाम क्या है और मुझे किसकी खबर चाहिए। तो मेरे हसन ज़ादा आमोली कहते हैं कि उन्होंने जरा सी गर्दन ऐसी टेढ़ी की कि मुझे चेहरा नजर ना आए और कहा कि हम अपने खरीदार खुद पहचान लेते हैं। ये मानवियत है। ये माना दिया था। मिर्जा जवाद मलिक की तबरेजी कौमे एक जगह से गुजारे थे अपने एक शागिर्द के साथ, जमीन के ऊपर बैठकर फातिहा पढ़ने लगे, तो उनके शागिर्दों ने भी हाथ रखा फौरन फातिहा पढ़ने लगे। थोड़ी देर में खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन दफन है, तो हंसने लगे और चले गए। एक हफ्ते के बाद खुद दफन। ये मानवियत है, ये मानवियत है। अच्छा ये हमारी फील्ड है या नहीं है, हमने सोचा है कि नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी नहीं है तो फिर किसकी है? अगर हम अहले मुबाहला हैं, हम मुबाहला के चाहने वाले हैं, तो मानवियत तो हमारी फील्ड है, किसी और के हवाले क्यों किया हुआ है? पर मैं आपकी खिदमत में आज करता चलूं, जो भी इंसान अपनी मीरास का दावेदार नहीं होता, जाली लोग उसके दावेदार बन जाते हैं। इल्म आपकी मीरास है, आप दावेदार नहीं है, अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, क्योंकि आपने दावा नहीं किया। मानवियत आपकी, आप दावेदार नहीं है, अब जाली इरफान आए तो दावेदार बन जाएंगे। मोहतरम मैंने आपसे खिदमत में अर्ज किया था ना कि मैं मीलाद को भी मजलिस में तब्दील कर दूं, तो मैं ऐसे करता हूँ। मेरा राइस तमाम हुए, सिर्फ आखिर में एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा अमल के हवाले से, ताकि जो मैंने इतना कुछ मानवियत के बारे में कहा, मुमकिन है कोई मुझसे कहे कि भाई मानवियत पर हमें भी चलने के लिए क्या करना चाहिए, आखिर हमें भी कोई रास्ता पता चलना चाहिए। तो भाई एक सादा सा काम आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, बहुत छोटा सा एक काम, एक जुमले में अब मुझे ऐसा करना है कि सारी दुनिया को किसी तरीके से इसमें समेटना है, ताकि एक काम हल हो सके। वक्त भी खत्म हो चुका है कब का, लेकिन मैं अभी खिदमत में एक जुमला अर्ज करता चलूँ। ये जो हम लोग मजलिस पढ़ते हैं ना, और मौलाना हमें शरफ और ये लुत्फ इनायत किया हुआ है, अगर कुछ दिन नहीं पढ़ते तो मैं खुदा की कसम खा सकता हूँ, अगर कुछ दिन नहीं पढ़ते ना, तो हमें पता चल जाता है कि अब आप घाटे में, अब आप तो अगर कुछ दिन ऐसे गुजर जाए ना कि मजलिस पढ़ने को नहीं मिले और मसलन कोई काम ना हो, तो खुद ब खुद दिमाग पे लगता है जैसे अब हाथ से गया। उस वक्त से एक बात दिल चाह रही होती, भाई कहीं कुछ पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर जिंदगी बेकार, जिंदगी बेकार। तो हमें समझ में आ गया कि अभी अभी नहीं कह रहे, दावा नहीं कर रहे कि समझ में आ गया है, लेकिन लगता है कि समझ में आ रहा है कि इसकी अहमियत क्या है। और ये मजलिस का अजीब व गरीब लुत्फ है, अजीब व गरीब करम है, नहीं मालूम इसके असरात क्या क्या हैं, ये अल्लाह ही जानता है। एक दफ़ा इसी तरह मजलिस पड़ी एक जगह पर, कराची का नस्बता पसमानदा इलाका है, वहाँ पे काफ़ी पसमानदा, वहाँ पे हमने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद नज़र नियाज हो रही थी, उसके लिए बैठे हुए थे, तो एक आदमी हमारे पास आई। वाक्य मैं बहुत सुनाता हूँ, इंटरनेट पर जो लोग हमारे सुन चुके हैं वो बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे, तो मैं वहाँ पर सुनाता हूँ कि वो एक आदमी आया हमारे पास, वो कुछ बैठा हुआ था कुछ खड़ा हुआ था, न बैठा था न खड़ा था, दरमियानी हालत में। कहने लगा मौलाना एक सवाल किसी ने पूछा है, वो आपसे मुझे पूछना है और आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, मेरी रात की शिफ्ट है, एयरपोर्ट के पीछे का इलाका था। तो कहने लगा मेरी एयरपोर्ट पे रात की शिफ्ट है, मुझे जाना है, आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई आप पूछें। तो उसने मुझसे कहा मौलाना जल्दी से बताइए मारफत इमाम किसे कहते हैं। अब पहले तो मुझे ये सवाल बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक आदमी मेरे, मैं जाऊं किसी के पास मसलन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के डिपार्टमेंट में और उनसे कहूं भैया जरा 5 मिनट में मुझे पीएचडी तो करवाना, क्या हो रहा है? मारिफत इमाम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कैसे पहले तो मेरा दिल चाह नहीं, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर मेरा दिल चाह उससे कहूँ कि बंदा खुदा कल भी आऊँगा तो कल जरा तफसील से आ जाना, साथ बैठ जाएंगे फिर उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। उसी माइक्रो सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में आया कि अगर ये कल नहीं आया तो इसका तो सवाल बेचारे का गया। तो मैंने उन्हीं सेकंड्स के अंदर, मुझे नहीं मालूम ये सारी चीजें माइक्रो सेकंड्स में होती कैसे, लेकिन हो जाता है उन्हीं माइक्रो सेकंड्स में। मैंने खुदा से कहा, खुदा अगर इसको देने के लिए मुझे सिखा दे तो मैं इसको दे दूं, वरना अपने पल्ले में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इतना खड़े खड़े मार्फत इमाम सिखा सके। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक जुमला आया, मैंने वो जुमला उसको बोल दिया, वो बहुत खुश हुआ, मुतमइन हो गया, वो चला गया। अच्छा, हम लोग जब इस तरह का कोई अचानक दिमाग में जुमला आता है तो थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी गलत चैनल से आ गया हो, हमें सही चैनल से भेजना है। तो रात को जाके मैंने उसका रिव्यू किया कि मैंने वो जो जुमला अचानक आया था मैंने बोल दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गलत काम कर दिया था, तो कल भी मौका मिलेगा कहीं उसको सही करो। फिर मैंने उसके जब ऊपर गौर किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, जुमला सॉलिड है। फिर उसके बाद मैंने गौर किया कि अगर इतना ही सॉलिड है तो मैं उस पर अमल क्यों नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा अपने अमल के लिए कैसा है, तो मुझे एक और बात पता चली, मुझे कि मैंने तमाम तर तालिबे इल्मी के बावजूद इतना अच्छा जुमला कम सुना है। फिर मैंने सोचा अगर इस पर अमल करूँ तो क्या होगा, तो मैंने ये हिसाब लगाया कि अगर मैं इस पर अमल कर गया तो मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। तो मैंने मानवियत के ऊपर इतने आपकी खिदमत में आरज़ पेश किए, जाते जाते ये जुमला तो बोल दूँ ताकि आपके किसी काम आ जाए। और मैं हमेशा एक और काम भी करता हूँ, जहाँ कहीं भी पढ़ने जाता हूँ ये सोचता हूँ कि ये आखिरी है। इसमें इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि मैं पूरी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ कि यहीं से कयामत तक के लिए मुझे कुछ ना कुछ मिलना है, दूसरी बात ये कि तवक्को नहीं रहती। तवक्कोआत कमजोरियाँ लाती हैं, तवक्को ना रहे कमजोरी नहीं आएगी। आप इस बात को जहन में रखिएगा, मैंने बहुत तेज़ी से आपकी खिदमत में अर्ज किया, तवक्कोआत से कमजोरियाँ आती, चाहे औलाद से ही क्यों ना हो, तवक्कोआत कमजोरी लाती। तवक्को करनी है ना तो खुदा और उसके निज़ाम से रखो बस, बाकी किसी से नहीं। तो भाई वो जुमला क्या है, अब एक दफ़ा दुरूद भेजेगा मोहम्मद, मैंने बंदे खुदा से कहा कि देखो बंदे खुदा, ये जो मारिफत इमाम है, अगर तुम वो मारिफत कह रहे हो जो हज़रत सलमान फारसी के पास थी, ना वो हमारे बस में है ना हमारी जिम्मेदारी में, वो एक और आला पाए की मारिफत है, वो हमारे बस में नहीं है, ना वो हमारी जिम्मेदारी में डाली गई है। अगर वो हमारी जिम्मेदारी में होती ना तो हम सब मारे गए थे। क्यों? मन लम यारिफ इमाम ज़माने जिम्मेदारी में होती तो खुदा ना करे हमारा हिसाब किताब बहुत खराब हो गया था। अच्छा, मेरे गौर जुमला पूछता हूँ, सिर्फ मुझे बताओ इमाम कब दुनिया में तशरीफ लाए, कब दुनिया से चले गए, ये मारफत के लिए काफी है? बहुत कहानी है इसके ऊपर, अभी छोड़ देता हूँ, वह खत्म हो चुका है एक जुमले में। मैंने उस बंदे खुदा से कहा, देखो बंदे खुदा, अपने इमाम की पसंद और नापसंद को पहचानो, यही मारिफत है। इमाम की पसंद और नापसंद इसको पहचान लो, यही मारिफत है इमाम। पसंद और नापसंद इनको पहचान लो, यही मार्फत है। अब आप मुझसे कह सकते हैं भाई हमें ये कैसे पता चले, ये पसंद और नापसंद हमें कैसे पता चले? तो मैं आपको एक मरहला खुशखबरी का दूंगा कि खुदा ने इसके बहुत सारे हकायक मेरे और आपके सीनों में डाल दिए। एक चैलेंज हमारे सामने है, जो इस पर अमल करेगा उसकी मारिफत बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अमल कैसे होगा? अब अमल का ये नुक्ता है, अमल का नुक्ता यहां पर वो क्या है, या अल्लाह मदद फरमा, हमें और आपने अपनी जिंदगी में फैसले करने होते हैं। मसलन आपने अभी अभी घर जाने के बाद सोने के वक्त ये फैसला करना है कि सुबह कितने बजे उठना है। सही है, जब भी आपको जिंदगी में फैसला करना हो, जब भी फैसला करना हो, छोटा फैसला करना हो या बड़ा फैसला करना हो, फिर सारी मेहनत करें छोड़ यहां पर आ रहा है। सही है, छोटा फैसला करना हो या बड़ा फैसला करना हो, अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, मेरे इमाम किस चीज से खुश हैं? बस मिसाल के तौर पर मुझे फैसला करना है सुबह कितने बजे उठूं, कितने बजे उठूं तो मौला खुश हैं और कितने बजे उठूं तो मौला खुश
नहीं।
सिर्फ यही एक, अगर कोई बंदा या अल्लाह की बंदी मुझसे ये कहे कि मैंने एक हफ्ता इस पर अमल करना है, मैं इतनी एक घंटे से ज्यादा की तकरीर के बाद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि एक हफ्ता अमल करे मानवियत नसीब ना हो। सिर्फ एक हफ्ता क्या करें, जब भी कोई फैसला करना हो अपने आप से पूछे मेरे मौला इस पर खुश हैं। चंद फैसले मैं बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे जवान दोस्त साहबाब मियां तशरीफ फरमा है, मसलन उनको टीवी पे कुछ देखना है, अपने आप से पूछें अंदर तो जवानों को मैंने क्यों कहा, बड़े क्या नहीं देखते? बड़ों को भी देखना है, वो देखने लगे अपने आप से एक सवाल पूछे, ये जो मैं देखूंगा इस पे इमाम खुश है, इस पे इमाम खुश है। अच्छा अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये जवाब कहां से आएगा, ये जवाब आएगा कहां से? सर ये जवाब आएगा आपके दिल से। अच्छा ये जो मेरा दिल है ये क्या झूठ बोलेगा इस मामले में? मैं कहूंगा नहीं, आपका दिल इस मामले में सच बोलेगा हमेशा। क्यों? तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि देखो मैंने अभी इतराफ़ किया है कि मैंने बचपन से इमाम हुसैन का गम सुना है, मातम किया है। अगर मैंने 40 साल या हुसैन किया है, अब भी मेरा दिल न बता सके कि हुसैन को क्या पसंद है, एक तरफ से मैं दावेदार हूं कि शिया हमारी खमीर से पैदा हुए हैं और उनकी खमीर को पता ना हो कि इमाम को क्या पसंद है। भाई तुम्हारी और मेरी मिट्टी में ये मोहब्बत है, तो मुझे सिर्फ एक काम करना चाहिए, अपनी उस मिट्टी से ये सवाल करना चाहिए कि ऐ मेरी तीनत कि जो हुब्बे अहले बैत में खमीर हुई, ये बता मेरे इमाम को क्या पसंद है। उसके बाद मैं सिर्फ एक फैसला करूं, जो उनको पसंद है वो करूंगा, जो पसंद नहीं है वो नहीं करूंगा। और अज़ीज़ाने मोहतरम, आप अहले बैत के चाहने वाले आशिकीन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, मैं आपको खत्ई वसूख के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने एक हफ्ता भी ये कर लिया, अच्छा फिर किसी फैसले को बीच से निकालिएगा नहीं, मसलन ऐसा ना हो कि सुबह को एक फैसला करने लगे ये मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूं, नहीं ये नहीं चलेगा, फिर सारे फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक। मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं एक हफ्ते के अंदर आपकी मानवियत, आपकी जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी कुछ और। अच्छा एक आखिरी सवाल इसी के ऊपर रखते हुए, अगर मैंने वो नहीं किया जो इमाम को पसंद है तो क्या होगा? फिर सुकून भूल जाओ, फिर खुशी भूल जाओ। क्यों? कायनात के महवर को ना खुश करके कोई खुशी नहीं ले पाए। वो जो खुतबे आलम है उसको नाराज करके कोई इज्जत नहीं ले पाया। इन्नल इज्जत लिल्लाह वलि रसूलि वलि मोमिनीन वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत इनकी बीवी है, खुशी इनकी खुशी में है। अगर आपने इनको खुश कर लिया आप खुश रहेंगे, इनको खुश किया आपको सुकून मिलेगा, नहीं हुआ फिर कुछ नहीं। अच्छा जाली मस्नूई पता नहीं क्या कुछ देख कर और क्या कुछ सुन के खुश होता रहे इंसान, हम सबको पता है इसमें खुशी नहीं आएगी, इसमें सिवाय तबाही की कुछ नहीं मिलेगा। अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपनी औलाद पर रहम करो। वो ना करें जो उनको पसंद नहीं है, बस वो करें जो उन्हें पसंद है। मौला का एहसान हुआ, खुदा ने यहाँ आना नसीब किया, आपकी खिदमत में हाजिर होने की सआदत मिली, मुबाहला के ऊपर गुफ्तगू हुई, हस्ब आदत ईद को मजलिस में तब्दील किया, लेकिन एक पैगाम देने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा मुतालिब का क्रस्ट था, जो सेंटर था, वो ये था कि आपको सिर्फ तारीख नहीं सुनना, उससे सीख कर आगे अमल करना, क्योंकि आपने वक्त के इमाम की नुसरत करनी है, आपने गदीर से विलायत का पैगाम सीखना है, जुल्म से लड़ना है, आपने खैबर से शुजात सीखनी है, शुजा बन के जिंदगी गुजारनी है, आपने मुबाहला से मानवियत सीखनी है, अहल मानवियत बनना है। मानवियत करामत नहीं है, मानवियत कुर्ब खुदा का नाम है। और मानवियत की मिसालें आपकी खिदमत में बयान की गई। मानवियत के लिए मारिफत इमाम जरूरी है, मारिफत इमाम के लिए एक जुमला अर्ज किया गया, जब भी कोई फैसला करने लगे अपने आप से पूछ लें इमाम किस पे खुश हैं, जिस पे खुश हैं वो करना। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين। वक्त इमाम के हुजूर अदा एहतराम के लिए, इस ईद को अपने लिए मुबारक मजीद मुबारक बनाने के लिए, ईदी को हासिल करने के लिए, उनकी खुशियों के उसूल के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जैसे कि जश्न के शुरू में कहा गया था कि इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद एक 15 से 20 मिनट की एक सवाल नशिस्त होगी, क्योंकि ये बड़ी सआदत है हमारे दरमियान के कुल्ला साहब आज मौजूद हैं। आप मोमिनीन और मोमिनात जितने भी हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अगर किसी का किसी हवाले से भी सवाल हो तो वो कर सकते हैं। मोमिनात अगर लिख सकें ऊपर पेन पड़े हुए अलमारी में साथ ही वो भेज दें अपने तहरीरी सवाल, और मोमिनीन जो हैं अगर किसी का हो तो मैं माइक देता हूँ, उनके पास सबसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, किसी भी हवाले से हो, वो नजबी वाले से, पॉलिटिकल वाले से, कोई भी हो। बाबा बलम सम्मान पर
मेरा एक सवाल ये है कि आज के दौर के अंदर जो यमन के हालात हैं, हौसी जो कबाइल हैं वो किस हद तक शीयत के करीब हैं, उनका एक लिंक ईरान से भी है और हमारे दिल में भी उनके लिए हमदर्दी यकीनन महसूस होती है, तो शीयत के किस करीब कितने करीब हैं?
बिस्मिल्लाह, इसके लिए कोशिश ही करेंगे कि आप सवाल बोल दीजिएगा और मैं सवाल को दोहरा दूंगा ताकि माइक को बार बार हमें आगे पीछे ना करना पड़े, सब बच जाएंगे। हौसियों के बारे में हमने बहुत तफसील से जब ये जंग हुई थी उसके फौरन बाद एक प्रोग्राम किया था जाविया नाम करके, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, बहुत तफसील से इनकी तारीख और इनके अकायद के बारे में गुफ्तगू की थी। यमन में बुनियादी तौर पर ज़ैदी फिक्र के मानने वाले मौजूद हैं, जो चार इमामों को मानते हैं और चौथे इमाम के बाद से उनका इमामत का सिलसिला जुदा हो जाता है। ज़ैदी बुनियादी तौर पर वहाँ पर हैं। अच्छा, इन ज़ैदियों के अंदर बहुत सारे फ़िरके हैं, ज़ैदियों के अंदर अपने बहुत सारे फ़िरके हैं, उनमें से कुछ फ़िरके ऐसे हैं जो 12 इमामियों से इंतहाई नज़दीक हैं, इंतहाई नज़दीक हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्क कहाँ पर है, कुछ ज़ैदी ऐसे हैं जो सिर्फ 4 इमाम तक नहीं मानते, 12 इमाम तक भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ अकीदे के एतबार से फ़र्क रह जाता है कि वो कहते हैं इमाम तो हैं लेकिन इमामत को साबित करने के लिए शमशीर उठानी पड़ेगी। جب تک شمشیر نہیں اٹھائی امامت ثابت نہیں ہوگی. یہ زیدیہ کا ایک عمومی عقیدہ ہے. اچھا حوثی کون ہے؟ حوثی زیدیہ کا ایک فرقہ جو 12 امامیوں سے آخری 20-25 سال میں انتہائی نزدیک ہو گیا. اتنا نزدیک ہوا کہ باقی زیدی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ لوگ 12 امام ہیں. باقی زیدیہ حوثیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ حوثی 12 امام ہی ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلو تھوڑا سا ایک کمپلیکیشن ہے یہاں پر. حوثی قبیلے کا نام ہے, مذہب کا نام نہیں ہے. حوثی قبیلے کا نام ہے, اور چونکہ اس قبیلے کے ایک ماننے والے کو لیڈر مان لیا تو سب کو لوگ حوثی کہنے لگے, چاہے وہ اس قبیلے کے نہیں تھے, جبکہ حوثی ایک قبیلے کا نام تھا. لیکن اب چونکہ اس کے لیڈر کو بہت سارے لوگوں نے اپنا لیڈر مان لیا تو سب ہی کو حوثی کہنے لگے. اور یہ لوگ جو تھے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ لوگ اب اس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام اور وقت کے امام کے نزدیک ہوئے کہ باقی لوگ ان کو کہنے لگے کہ بھائی یہ لوگ 12 امامی ہو چکے ہیں, یہ صرف اپنے آپ کو زیدیہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے ان کا تعلق نہ ٹوٹے. الحمدللہ رب العالمین, یہ لوگ وقت کے امام کے ماننے والے ہیں, وقت کے امام کے انتظار کے دعوے دار ہیں. تو اگر یہ 12 امامی نہ ہوئے ہوں تو کوئی معمولی سی کوئی چیز رہ گئی ہوگی. البتہ میرے اپنے نزدیک میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ 12 امامی ہو بھی گئے ہوں تو شاید بہتر یہ ہے کہ اس وقت اعلان نہ کریں. اس وقت اعلان نہ کرنا بہتر ہے تاکہ جن لوگوں کو لے کر یہ لوگ چلنا چاہ رہے ہیں وہ چل سکیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین, ان کے نعروں کو دیکھیں, ان کے عمل کو دیکھیں, ان کے اخلاق کو دیکھیں تو ہمیں بہت اعلیٰ پائے کے لوگ نظر آ رہے ہیں. مثلا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ پاکستانی فوج یمن جائے گی یا نہیں جائے گی, پاکستانی یمن میں پھنسے ہوئے تھے. ان پھنسے ہوئے لوگوں میں خواتین اور بچے اور بوڑھے سب شامل تھے. پاکستانی حکومت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ جو عورتیں اور بچے تھے یہ یمن کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے تھے. حوثیوں کے قبضے میں وہ ایئرپورٹ تھا. حوثیوں نے ان عورتوں اور بچوں کے لیے ایئرپورٹ کھلوایا تاکہ یہ لوگ گرمی میں باہر نہ بیٹھیں, ٹھنڈک میں بیٹھیں. ان کو پتا تھا کہ ان کی قوم کی فوج ہمیں مارنے کے لیے آنے والی ہے. اگر یہ لوگ سیاست باز ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیتے اور پاکستانی حکومت سے کہتے کہ اگر تم نے فوج بھیجنے کا ارادہ بھی کیا تو ہم ان عورتوں اور بچوں کو اپنی قید میں رکھیں گے. انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا. انہوں نے خواتین بچوں کو بوڑھوں کو عزت و احترام کے ساتھ پاکستان واپس بھیجنے کا بندوبست کیا. عزیزان محترم, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ اخلاق میں بہت ساری قوموں سے بہتر قوم اخلاق. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس پروگرام میں میں نے تفصیل سے اس کا انالیسس کیا تھا, بہت تفصیل سے. اور اس انالیسس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت جو سن رہے تھے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سعودیوں کے لیے حوثیوں کا ہرانے کا امکان زیرو کے نزدیک ہے. زیرو کے نزدیک کوئی امکان نہیں. میں مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے سیاست کا اور جنگوں کا, سننے کا, سمجھنے کا اور بولنے کا. تو میں اس انالیسس کی روشنی میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں کہہ رہا تھا کہ سعودیوں کے پاس حوثیوں کو ہرانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور آج میں اسی مضبوطی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, سعودیوں کے پاس حوثیوں کو ہرانے کا کوئی امکان نہیں ہے. حوثی نہیں ہار پائیں گے اس طرح. اگر سعودی اپنی اس مصیبت میں ڈٹے رہے, اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں, تو یقیناً سعودی ختم ہو جائیں گے. یہ مجھے یقین ہے, میں آپ کو یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سعودی حکمرانوں نے اپنی اس حماقت کو جاری رکھا کہ وہ یمن کے اوپر حملے کو چلاتے رہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آل سعود کی حکومت کا اسی میں خاتمہ ہو جائے گا. اگر یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ میرے عقیدے کے مطابق, میرے عقیدہ نے حساب کتاب کے مطابق, عقیدہ اس کو عربی میں کہتے ہیں, میرے حساب کتاب کے مطابق آل سعود کی حکومت کی بقا کا کوئی امکان نہیں. آل سعود کی حکومت نے ختم ہونا ہے. البتہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آگے چند سالوں میں خون بہت بہے گا، بے انتہا خون بہے گا، یہ مصیبت ہے. اب جو چند سال آنے والے ہیں، 15 ختم ہو رہا ہے 2015، میرے حساب سے 16-17 کسی حد تک 18 بہت خون بہے گا، شاید ہم نے اب تک نہیں دیکھا تھا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ معاملہ بہت خراب ہوگا انسانی جانوں کے اعتبار سے. ہاں یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آل سعود باقی نہیں بچیں، ان کو ختم ہونا ہوگا. مڈل ایسٹ کا نقشہ یقیناً تبدیل ہوگا، یہ پورا میپ چینج ہوگا. کتنے سال میں ہوگا؟ میرا اندازہ ہے 3 سال، میرا اندازہ ہے کہ 3 سال میں، 5 بھی ہو سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسانی جانیں اس کے اندر کافی ہیں. اللہ انشاءاللہ سب پہ اپنا رحم فرمائے اور سب کی جان مال اہل بیت کی، خاص کر چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان پر مڈل ایسٹ کی اس تبدیلی کا کیا اثر ہوگا اور داعش کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے فی الحال داعش کے ختم ہونے کا فوری امکان نظر نہیں آ رہا، اور امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ جو ریسورسز داعش کو دیے جا چکے ہیں اور ان ریسورسز میں ہیومن ریسورسز، ویپن، فائنینشیل ریسورسز یہ سب شامل ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے اس گروپ کے فوری ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طاقت اتنی، جس کو ہم لوگ نیوٹرلائز کہتے ہیں، نیوٹرلائز ہو جائے کہ یہ سسٹین کرے لیکن ڈینجرس نہ ہو، اگریشن اس کا ختم ہو جائے، تو یہ ہو جائے گا میرا اپنا یہ خیال ہے. لیکن داعش کے ختم ہونے کا امکان فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا کسی بھی ایسی طاقت کے، جنہوں نے داعش کو بنایا ہے فی الحال ایسی کوئی مصلحت نظر نہیں آتی کہ وہ داعش کو مکمل ختم کرے، تو یہ داعش کو باقی رکھیں گے. پاکستان کے اوپر اگر یہ آرمی اسکول جو پشاور میں ہوا اس واقعے سے پہلے کی کہانی کہتے تو اثرات بے انتہا خراب ہونے والے تھے، بے انتہا خراب ہونے والے تھے. گورنمنٹ کی پالیسی میں میجر شفٹ آیا ہے. میرے اپنے خیال میں صرف ایک جملہ کہہ پاؤں گا، واقعات پالیسی کو تبدیل نہیں کرتے، پشاور جیسے واقعات پالیسی کی تبدیلی کی نشانی ہوتے ہیں. ان واقعات کی بیس پر پالیسی تبدیل نہیں ہوتی، یہ واقعات پالیسی کی تبدیلی کی نشانی بن سکتے. اس سے زیادہ بولنا واپس جانے کے لیے خطرناک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شفٹ آیا ہے، شفٹ آیا ہے. مڈل ایسٹ کی تبدیلی ہمیں اس وقت کم متاثر کرے گی، کم متاثر کرے گی، لیکن ایک بہت بڑی مشکل ہے جو لمبی مدت میں نفرتیں بوئی گئی ہیں یہ ختم نہیں ہوگی. ہم نے 30 سال میں نفرتوں کے بیج بونے کا ایک عمل دیکھا، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، اس میں بہت ٹائم لگے گا، ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر ہم لوگوں کا اصلی فنکشن وہ نہ بنا جو میں نے آپ سے کہا ہے، علم دینے والا، تو ہم ان نفرتوں کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. جب